चलिए समझते हैं पूज्य गुरुदेव की पुस्तक स्वाध्याय और सत्संग के तीसरे अध्याय सत्संग की महिमा अपार है को। आप सोचिए आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मन की शांति और सही रास्ता भला कहाँ मिलता है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि इसका सबसे सीधा और सरल जवाब है सत्संग, मतलब अच्छे और ज्ञानी लोगों का साथ। तो सवाल ही उठता है कि सत्संग में ऐसा क्या है ना? चलिए इसके तीन बड़े फायदों को देखते हैं। सबसे पहली बात, सत्संग आपके विवेक को जगाता है और सारी बुरी आदतों को ना जड़ से खत्म कर देता है। पूज्य गुरुदेव तो इसे पारस मणि जैसा बताते हैं जो किसी भी इंसान को बदल सकता है, उसकी सोच को साफ कर सकता है और उसकी बातों में सच्चाई भर सकता है। दूसरी बात ये कि सत्संग भक्ति तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है। देखिए, ज्ञान का मार्ग तलवार की धार जैसा हो सकता है और कर्म के मार्ग में भटकने का डर रहता है, लेकिन भक्ति का रास्ता सबसे आसान है और उसकी पहली सीढ़ी ही सत्संग है, क्योंकि कहा भी गया है बिनु सत्संग विवेक न होई। और तीसरी और सबसे कमाल की बात, सत्संग का फायदा आपको तुरंत मिलता है और बहुत आसानी से। सोचिए, जो फल बड़े बड़े यज्ञ या तप से भी मिलना मुश्किल है, वो आपको बस कुछ पल साधु संतों के साथ बिताने से मिल जाता है। कबीरदास और तुलसीदास जी ने भी तो यही कहा है कि अच्छी संगति एक पल में ही आपके सारे पाप और कष्ट हर लेती है। तो कुल मिलाकर सत्संग वो शक्ति है जो आपके जीवन से हर मुश्किल को हटाकर आपको उन्नति और परम आनंद की ओर ले जाती है।
नमस्कार, एक बहुत आम सी बात है कि हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उनका असर हम पर पड़ता है।
जी बिल्कुल।
पर क्या इसे कभी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए एक सोची समझी स्ट्रैटेजी की तरह इस्तेमाल करने के बारे में सोचा है? आज हम पूज्य गुरुदेव के विचारों की गहराई में उतर रहे हैं और उनके अध्याय सत्संग की महिमा अपार है से यही समझने की कोशिश करेंगे।
और ये बात आज की दुनिया में तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है।
हाँ, जहाँ चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन और नेगेटिविटी है।
जी, पूज्य गुरुदेव समझाते हैं कि आज समाज में लोग अभाव और पीड़ा से गुजर रहे हैं। ऐसे में वे अक्सर ऐसी संगति में पड़ जाते हैं जो उन्हें उनके असल मकसद से भटका देती है।
अच्छा।
और फिर जब उन्हें कोई अच्छी गहरी बात बताई जाती है तो वो एक कड़वी दवा जैसी लगती है।
ये तो एक दिलचस्प बात है। मतलब हम जिस माहौल में रहते हैं वो तय करता है कि हमें क्या अच्छा लगेगा और क्या कड़वा।
हाँ बिल्कुल।
ये तो एक तरह का इमोशनल कंटेजियन हुआ। इसी से जुड़ी कबीरदास जी की एक बहुत सीधी सादी लेकिन गहरी बात है।
हाँ, उनका दोहा इस आइडिया को बहुत अच्छे से पकड़ता है। वो कहते हैं, कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याधि,
ऊंची संगत क्रूर की आठों पहर उपाधि।
जी, इसका सीधा मतलब है कि अच्छी संगति आपकी मुश्किलें कम करती है, जबकि गलत संगति वो तो 2400 घंटे सिर्फ टेंशन और प्रॉब्लम्स ही पैदा करती है।
सही बात है। ये सिर्फ एक नैतिक सलाह नहीं, एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ लगता है।
बिल्कुल है। आपका एनवायरनमेंट आपकी मेंटल स्टेट को सीधे तौर पर अफेक्ट करता है।
तो ये सिर्फ भक्ति या अध्यात्म तक सीमित नहीं है, पर वेद शास्त्रों में ईश्वर तक पहुंचने के तीन रास्ते बताए गए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। कहा जाता है कि ज्ञान का रास्ता बहुत कठिन है, तलवार की धार पर चलने जैसा। कर्म के रास्ते पर सही गलत का कन्फ्यूजन हो सकता है।
जी,
भक्ति को सबसे सरल माना गया।
हाँ।
पर उसके लिए भी पहली शर्त सत्संगी क्यों रखी गई? क्या बिना अच्छी संगति के भक्ति संभव नहीं है?
ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पूज्य गुरुदेव के अनुसार भक्ति सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, वो एक स्टेट ऑफ बीइंग है, एक पॉजिटिव माइंडसेट है।
अच्छा।
और वो माइंडसेट अकेले में डेवलप करना बहुत मुश्किल है।
सत्संग वो माहौल देता है।
वो माहौल देता है।
हाँ।
वो माहौल देता है जहाँ आपका विश्वास और आपकी पॉजिटिविटी नेचुरली ग्रो करती है।
इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने पकड़ा जब उन्होंने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिन सुलभ न सोई।
यहाँ विवेक शब्द बहुत जरूरी है।
बहुत जरूरी। इसका मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि सही और गलत में फर्क करने की समझ है, एक तरह की क्रिटिकल थिंकिंग।
और आज के इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में जहाँ हर तरफ मिस इन्फॉर्मेशन है, इस विवेक की जरूरत तो सबसे ज्यादा है।
बिल्कुल। तो तुलसीदास जी यही कह रहे हैं कि सही लोगों के साथ रहने से ही हमारी सोचने समझने की शक्ति तेज होती है।
ये तो सीधे सीधे पर्सनल डेवलपमेंट से जुड़ गया।
बिल्कुल। सत्संग आपको एक एको चेम्बर से निकालकर एक साउंड बोर्ड देता है। ये आपकी सोच को चैलेंज करता है, उसे साफ करता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से सत्संग की तुलना पारस मणि से की गई है जो लोहे को सोना बना देती है।
हाँ, तुलसीदास जी का एक और दोहा है जो कहता है कि कुछ पल की अच्छी संगति भी करोड़ों दुखों को हर सकती है।
जी, एक घड़ी आधी घड़ी।
हाँ, लेकिन इस आइडिया को सबसे प्रैक्टिकल तरीके से शायद भर्तृहरि जी ने समझाया। उनके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि उनका नाम सबने नहीं सुना होगा।
जरूर, भर्तृहरि 6वीं शताब्दी के एक राजा थे जो बाद में दार्शनिक और योगी बन गए। उन्होंने नीतिशतक नाम की एक कमाल की पुस्तक लिखी।
नीतिशतक?
जी, जो एथिक्स और पॉलिसी पर एक प्रैक्टिकल गाइड जैसी है। उसमें वो सत्संग के फायदों की एक लिस्ट देते हैं जो आज के कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मैनुअल जैसा लगता है।
अच्छा।
वो कहते हैं कि सत्संग बुद्धि की मूर्खता या जड़ता को हरता है, मतलब इट फाइट्स इग्नोरेंस। फिर वाणी में सत्य सींचता है,
ऑथेंटिक कम्युनिकेशन।
हाँ, मान और उन्नति बढ़ाता है, पाप से दूर करता है और चित्त को प्रसन्न करता है और कीर्ति फैलाता है।
वाह।
और वो एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं, भला ये सत्संगति इंसान के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती?
ये तो एक 1500 साल पुराना पर्सनल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है।
बिल्कुल।
वाह। तो जब हम इन सभी विचारों को एक साथ देखते हैं पूज्य गुरुदेव के नजरिए से, तो ये साफ हो जाता है कि सत्संग कोई पैसिव एक्टिविटी नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
ये एक एक्टिव चॉइस है। जैसा तुलसीदास जी ने कहा, सत्संगति मुदमंगल मूला, यानी ये सारी खुशियों और अच्छाइयों की जड़ है।
एकदम सही। और सबसे खास बात यह है कि जो फायदे बड़ी बड़ी तपस्या, यज्ञ या दान से भी मुश्किल से मिलते हैं, वो सही माहौल और सही लोगों के साथ रहने से आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन इसका अनुभव कैसा होता है, इसे शब्दों में बताना वो नामुमकिन है। इसकी तुलना उस गूंगे व्यक्ति से की गई है जो मीठा फल तो खाता है, उसे स्वाद भी आता है,
पर बता नहीं सकता कि कैसा है।
जी, सत्संग का आनंद भी ऐसा ही है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है।
और शायद यहीं हम आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ सकते हैं।
जरूर।
अगर सत्संग से मिलने वाला फायदा इतना गहरा है कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, तो आज की इस भागदौड़ भरी और डिजिटल दुनिया में हम अपने लिए ऐसा माहौल एक्टिव रूप से कैसे बना सकते हैं और उसे बनाए रख सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। नमस्कार, और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही कह सकते हैं गहरा विषय है। ये विषय पूज्य गुरुदेव, युग ऋषि, तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के विचारों पर आधारित है। गुरुदेव अक्सर कहते थे कि वे व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार हैं, और उनकी सारी शक्ति उनके विचारों में ही है। तो आज हम उनके एक ऐसे ही शक्तिशाली विचार की गहराई में उतरेंगे।
बिल्कुल, आज हम उनकी पुस्तक स्वाध्याय और सत्संग के 3रे अध्याय पर बात कर रहे हैं। अध्याय का नाम है सत्संग की महिमा अपार है। लेकिन हम इसे सिर्फ एक आध्यात्मिक लेख की तरह नहीं देखेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि सत्संग का ये जो प्राचीन विचार है, वो आज की हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। मतलब आज की ये डिजिटल, हमेशा कनेक्टेड, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अकेली पड़ चुकी जिंदगी।
ये तो सोचने का एक बहुत अच्छा नज़रिया है, क्योंकि आज हम सब एक अजीब से भटकाव में जी रहे हैं ना, एक अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जबकि हम शायद पहले से कहीं ज़्यादा लोगों से जुड़े हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सदियों पुराना कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखा सकता है। गुरुदेव शुरुआत में कहते हैं कि दुनिया के हर महापुरुष ने आत्मकल्याण के लिए सत्संग को सबसे ज़रूरी माना है।
जी,
यानी ऐसे लोगों का साथ जिनका जीवन परोपकार और ईश्वर चिंतन में लगा हो।
और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सत्संग को सिर्फ एक धार्मिक गतिविधि नहीं माना गया है, इसे ज्ञान पाने का, सही गलत को समझने का एक जरिया बताया गया है।
एक तरह का नैतिक कंपास।
बिल्कुल, एक नैतिक और बौद्धिक कंपास जो हमें कल्याण के रास्ते पर ले जाता है। ये सिर्फ व्यक्तिगत लाभ से कहीं बढ़कर है, ये उस समझ की नींव है जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाती है।
और गुरुदेव, आज के समाज की जो तस्वीर खींचते हैं वो तो बहुत जानी पहचानी लगती है। दरिद्रता, अभाव, उत्पीड़न। वो कहते हैं कि इंसान की इच्छाएं एक बरगद के पेड़ की उलझी हुई जड़ों की तरह हो गई हैं।
हाँ, जिन्हें सुलझाना नामुमकिन सा लगता है।
मुझे लगता है ये आज की हसल कल्चर और वो कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं का बिल्कुल सटीक वर्णन है।
और वे इस उलझन का एक बड़ा कारण कुसंगति को बताती है,
यानी बुरी सोहबत।
जी, और ये सिर्फ बुरे दोस्तों तक सीमित नहीं है। अगर आज के संदर्भ में देखें तो कुसंगति का मतलब है टॉक्सिक सोशल मीडिया फीड्स, नफरत फैलाने वाली खबरें, या ऐसा कोई भी कंटेंट जो हमें हमारे नैतिक मूल्यों से दूर ले जाए। होता क्या है कि बुरी संगति में पड़कर लोग अपने कर्तव्य से भटक जाते हैं, और तब उन्हें कोई अच्छी सलाह, कोई सत्पुरुषों की बात, वो कड़वी दवाई जैसी लगती है।
इसी बात पर कबीर दास जी का एक दोहा है जो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ कर देता है कि संगति का असर कितना गहरा हो सकता है।
जी, कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा संगति साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगति क्रूर की आठों पहर उपाधि। मतलब बहुत सीधा है, एक साधु या अच्छे इंसान की संगति आपकी समस्याओं को, आपकी बीमारियों को हर लेती है।
और वहीं दूसरी तरफ
एक दुष्ट या कह सकते हैं नेगेटिव इंसान की संगति, वो 24 घंटे सिर्फ नई नई मुसीबतें खड़ी करती है।
ये मुझे उस एहसास की दिलाता है जब आप किसी बहुत नेगेटिव दोस्त के साथ एक घंटा बिताते हैं और घर आकर बिल्कुल थका हुआ महसूस करते हैं।
सही बात है।
और वहीं दूसरी तरफ किसी पॉजिटिव और समझदार दोस्त से 10 मिनट बात करके भी लगता है जैसे दिमाग की सारी खिड़कियां खुल गई हों। कबीर शायद इसी अनुभव के एक एक्सट्रीम वर्जन की बात कर रहे हैं।
आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक ऊर्जा का लेन देन है। एक संगति आपकी ऊर्जा बढ़ाती है, दूसरी आपकी ऊर्जा सोख लेती है।
ये संगति के दो बिल्कुल विपरीत परिणामों को दिखाता है। तो ये तो हुई समस्या और उसके कारण की बात
जी,
लेकिन सवाल ये उठता है कि अच्छी संगति यानी सत्संग हमें आखिर ले कहां जाता है?
हाँ।
इसका अंतिम लक्ष्य क्या है?
हाँ।
यहीं पर गुरुदेव की पुस्तक इसे ईश्वर से जुड़ने के एक बड़े कॉन्सेप्ट से जोड़ती है जो वाकई दिलचस्प है।
हाँ, देखिए, वेद शास्त्रों में ईश्वर तक पहुंचने के 3 मुख्य रास्ते बताए गए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति।
हाँ।
और गुरुदेव इन तीनों की अपनी अपनी चुनौतियों को भी समझाते हैं। जैसे ज्ञान मार्ग, उसे तलवार की धार पर चलने जैसा मुश्किल बताया गया है।
तलवार की धार पर चलना मतलब इसे आज के जमाने में कैसे समझें? क्या ये ऐसा है जैसे बिना किसी यूनिवर्सिटी या टीचर के सिर्फ इंटरनेट पर पढ़कर क्वांटम फिजिक्स में PhD करने की कोशिश करना? मुमकिन तो है, पर ज्यादातर लोग या तो भटक जाएंगे या हार मान लेंगे।
क्या बात है, बहुत ही सही उदाहरण दिया आपने, बिल्कुल यही मतलब है। ये रास्ता बहुत तीखा और बौद्धिक रूप से बहुत ज्यादा मेहनत मांगता है, हर किसी के लिए नहीं है। फिर आता है कर्म मार्ग।
हाँ।
इसमें इंसान कर्म तो करता है, लेकिन जब पाप पुण्य और सही गलत के संगम पर पहुंचता है तो अक्सर कंफ्यूज हो जाता है।
और आज की दुनिया में तो नैतिक दुविधाएं और भी जटिल हैं।
बिल्कुल।
तो अगर ज्ञान और कर्म के रास्ते इतने मुश्किल हैं, तो क्या भक्ति का रास्ता एक तरह का आसान विकल्प है या इसमें भी अपनी अलग तरह की चुनौतियां हैं? मुझे लगता है कई लोग भक्ति को सिर्फ पूजा पाठ समझकर कमाकते हैं।
आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये आसान विकल्प नहीं है, बल्कि सबसे सुलभ विकल्प है, जिसमें भावना और समर्पण की मुख्य भूमिका होती है। लेकिन गुरुदेव बताते हैं कि उस भक्ति के सरोवर में गोता लगाने के लिए भी एक पहली सीढ़ी है, एक एंट्री टिकट है।
अच्छा।
और वो पहली और अनिवार्य सीढ़ी सत्संग ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत साफ कहा है, जो नहाई चह यह सर भाए, तो सत्संग करे मन लाए।
मतलब अगर आपको भक्ति रूपी सरोवर में नहाना है तो पहले मन लगाकर सत्संग करना होगा। तो सत्संग एक तरह से भक्ति के लिए जमीन तैयार करता है।
हाँ, वो एक माहौल बनाता है जहाँ भक्ति का बीज पनप सके। और बात यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ तक कहा गया है कि ज्ञान और कर्म भी सत्संग से ही प्रेरणा पाते हैं, और सत्संग अपने आप में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप बाजार से खरीद लें। ये ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। जैसा कि कहा गया है, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
इसका मतलब विवेक यानी सही और गलत में फर्क करने की समझ, वो बिना सत्संग के नहीं आती, और वो सत्संग बिना ईश्वर की कृपा के मिलना मुश्किल है। ये तो सत्संग के महत्व को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। ये कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि एक दैवीय कृपा है।
बिल्कुल। और इसीलिए इसके प्रभाव को भी किसी साधारण चीज जैसा नहीं बताया गया है। सत्संग की तुलना एक पारस मणि से की गई है।
पारस मणि?
जी, जैसे पारस मणि लोहे को छूकर सोना बना देती है, वैसे ही सत्संग इंसान की अमानुषिक प्रवृत्तियों को शुद्ध करता है।
अमानुषिक प्रवृत्तियां, ये शब्द थोड़ा भारी लगता है। इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? क्या ये हमारी ईर्ष्या, हमारा गुस्सा, टालमटोल करने की आदत या लालच की बात हो रही है?
आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। ये वही नकारात्मक आदतें और व्यवहार है जो हमें हमारी असल इंसानियत से दूर ले जाते हैं। सत्संग इन सभी नकारात्मक पैटर्न को धीरे धीरे बदलकर सकारात्मक गुणों में बदल देता है। ये इतना फाउंडेशनल है कि इसके बिना भजन, कीर्तन, ध्यान या पूजा भी बहुत मुश्किल या लगभग नामुमकिन बताए गए हैं।
तो अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर में देखें तो सत्संग सीधे तौर पर मोह पर हमला करता है। मोह यानी सांसारिक चीजों, रिश्तों और अपनी पहचान से हमारा जो गहरा चिपचिपा लगाव होता है, उस पर।
जी, और गुसाई जी के शब्दों में इसका एक पूरा प्रोसेस फ्लो समझाया गया है, एक के बाद एक घटने वाली प्रक्रिया। वे कहती हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु रामपद, होइ न दृढ़ अनुराग।
अच्छा, इसका क्रम क्या है?
इसका क्रम समझिए। पहला कदम, बिना सत्संग के आपको हरि कथा यानी जीवन के गहरे सत्य को सुनने का माहौल ही नहीं मिलेगा।
ठीक है।
दूसरा कदम, जब तक आप वो कथा सुनेंगे नहीं, तब तक आपका मोह, आपका गहरा अटैचमेंट भागेगा नहीं। और तीसरा कदम, जब तक मोह नहीं जाएगा, तब तक ईश्वर के प्रति या किसी ऊंचे आदर्श के प्रति आपका सच्चा और मजबूत प्रेम पैदा ही नहीं हो सकता।
अरे वाह, ये तो एक पूरी मनोवैज्ञानिक चेन रिएक्शन है, और इसकी शुरुआत सही लोगों के साथ सही विचारों के संपर्क में आने से होती है। ये सिर्फ धार्मिक बात नहीं है। अगर हम मोह को आज की भाषा में समझें तो ये है, सोशल मीडिया पर लाइक्स कम हो, अपने करियर के टाइटल का मोह।
हाँ, या इस बात का मोह कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं।
बिल्कुल। तो सत्संग यानी गहरी और सार्थक बातचीत हमें इन चीजों पर एक नया पर्सपेक्टिव देती है, जिससे ये मोह कमजोर पड़ने लगते हैं।
बिल्कुल सही, ये पर्सपेक्टिव का ही खेल है, और इस पर्सपेक्टिव शिफ्ट का असर कितना तेज हो सकता है ये भी बताया गया है।
हाँ, ये हिस्सा मुझे सच में चौंकाता है। यहाँ तक कहा गया है कि क्षण भर का सत्संग भी करोड़ों पापों और व्याधियों को हर सकता है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा दावा है। एक घड़ी यानी सिर्फ 24 मिनट की अच्छी संगति करोड़ों व्याधियों को हर सकती है। आज के दौर में ये सुनना थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। क्या इसका मतलब सचमुच शारीरिक बीमारियां हैं, या ये मानसिक और भावनात्मक उलझनों के लिए एक मेटाफर है?
ये एक बेहतरीन सवाल है। तुलसीदास जी का दोहा है, एक घड़ी आधी घड़ी और आध को आध, तुलसी संगति साधु की कोटिन हरे व्याधि। यहाँ व्याधि का मतलब सिर्फ शारीरिक रोग नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रोग भी हैं, चिंता, डर, नफरत, भ्रम।
अच्छा,
आप ही सोचिए, कभी कभी किसी समझदार इंसान से 10 मिनट की बातचीत आपको हफ्तों पुरानी चिंता से बाहर निकाल देती है। एक सही विचार, एक आहा मोमेंट आपके सोचने का पूरा तरीका बदल सकता है। ये उसी शक्तिशाली तात्कालिक प्रभाव की बात हो रही है, ये क्वांटिटी की नहीं क्वालिटी की बात है।
समझ गया, यह दवा की गोली की तरह नहीं है, बल्कि यह एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह है जो पूरे सिस्टम को ठीक कर सकता है। और इसके फायदे सिर्फ आध्यात्मिक या मानसिक ही नहीं है। नीति शतक में श्री भर्तृहरि जी ने तो इसकी एक पूरी लिस्ट दी है कि सत्संग से जीवन के हर क्षेत्र में क्या क्या लाभ होते हैं।
जी, वो श्लोक बहुत प्रसिद्ध है और सत्संग के सर्वांगीण प्रभाव को दर्शाता है। एक एक करके देखते हैं।
जी,
जाड्यम ध्यो हरति, यह बुद्धि की मूर्खता, उसकी जड़ता को हरता है, आपका दिमाग तेज और साफ हो जाता है। सिंचति वाची सत्यम, यह आपकी वाणी में सच्चाई को सींचता है, आप सच बोलने के लिए प्रेरित होते हैं।
मान उन्नति दिशति, यह आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाता है।
पाप मया करोति, यह पाप कर्मों से आपको दूर करता है।
जित्ता प्रसादयति, यह आपके मन को प्रसन्न और शांत करता है।
दिक्षु तनोति कीर्तिम, और ये दसों दिशाओं में आपका यश फैलाता है। और इन सब फायदों को गिनाने के बाद भर्तृहरि एक बहुत ही सुंदर सवाल पूछते हैं, सत्संगति कथम किम न करोति पुंसम, यानी भाई ऐसी कौन सी अच्छी चीज है जो सत्संग से नहीं मिल सकती।
तो भर्तृहरि का सवाल सिर्फ एक अलंकार नहीं है, वो एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई की ओर इशारा कर रहे हैं। जब आपकी बुद्धि साफ होती है और आप सच बोलते हैं, तो जाहिर है आपका मान सम्मान बढ़ेगा और मन शांत रहेगा। ये अलग अलग फायदे नहीं है, बल्कि एक ही सकारात्मक साइकिल के हिस्से हैं।
आपने बिल्कुल सही पकड़ा,
और इसकी शुरुआत सही संगति से होती है।
जी, ये एक डोमिनो इफेक्ट है, एक अच्छी आदत बाकी सभी अच्छी आदतों को खींच लाती है। इसीलिए तुलसीदास जी ने सत्संग को सब मंगलों का मूल कहा है, यानी हर शुभ चीज की जड़।
हाँ, और उनका वो दोहा तो इस तुलना को और भी खूबसूरत बना देता है, सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला।
ये एक बहुत गहरी तुलना है, यहाँ सत्संग को फल कहा गया है।
अच्छा, फल?
हाँ, फल और बाकी सभी साधन जैसे यज्ञ, तप, दान, जप, इन सब को फूल कहा गया है। फूल सुंदर होते हैं, वे प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन अंतिम लक्ष्य तो फल ही होता है। गुरुदेव के अनुसार सत्संग वो अंतिम परिणाम है, वो सिद्धि है, जबकि बाकी सब रास्ते उस तक पहुंचने की प्रक्रिया मात्र हैं।
अरे वाह, ये तो पूरे नजरिए को ही पलट देता है। हम अक्सर इन साधनों को ही लक्ष्य मान बैठते हैं, और अंत में सत्संग से मिलने वाले आनंद की प्रकृति को बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया।
हाँ, यह बताया गया है कि जो आनंद और भक्ति बड़ी बड़ी तपस्याओं से मुश्किल से मिलती है, वही साधुजनों के संग से बहुत आसानी से मिल जाती है, और उस आनंद की तुलना एक गूंगे व्यक्ति द्वारा मीठा फल चखने से की गई है।
मतलब वो व्यक्ति फल के रस का आनंद तो लेता है, उसे महसूस करता है, पर उसे शब्दों में बता नहीं सकता।
ठीक वैसे ही सत्संग का आनंद भी एक आंतरिक अनुभूति है, एक गहरा अनुभव है जिसे पूरी तरह से शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। ये अंदर से महसूस होने वाली शांति और स्पष्टता है।
तो यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि सत्संग सिर्फ अच्छे लोगों के साथ बैठना नहीं है, ये एक तरह का कॉग्निटिव हाइजीन है, मतलब मानसिक स्वच्छता।
वाह, बहुत अच्छा कहा।
जैसे हम शरीर के लिए अच्छा खाना खाते हैं, वैसे ही ये विचारों के लिए सही खुराक चुनने की प्रक्रिया है।
बिल्कुल, आज के जमाने में ये सिर्फ साधुओं की संगति नहीं, बल्कि ये चुनना है कि हम कौन से पॉडकास्ट सुनते हैं, किन लोगों को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, कौन सी पुस्तकें पढ़ते हैं और किन दोस्तों के साथ अपना कीमती वक्त बिताते हैं। ये हमारे मानसिक वातावरण को क्यूरेट करने का एक प्राचीन ब्लूप्रिंट है। ये उस पारसमणि की तरह है जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूकर बदल सकता है, हमारी बुद्धि से लेकर हमारी वाणी तक, और हमारी प्रतिष्ठा से लेकर हमारे मन की शांति तक।
तो ये चर्चा इस सवाल पर आकर रुकती है कि अगर अच्छी संगति का असर इतना गहरा और फायदेमंद है, तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे लागू करें।
और यही आज का सबसे जरूरी सवाल है। हम अपने आसपास के लोगों में, अपने परिवार में, और सबसे बढ़कर जिन विचारों को हम दिन रात अपने दिमाग में आने देते हैं, उनमें सत्संग को कैसे खोज सकते हैं। हम इसे अपने जीवन का एक अभिन्न अंग कैसे बना सकते हैं, सिर्फ एक कभी कभार की गतिविधि नहीं।
और इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। एक सवाल है जो श्रोताओं के लिए है, सोचिएगा, आज के इस डिजिटल युग में जहां हम लगातार सूचनाओं और लोगों से घिरे हुए हैं, हमारी संगति वास्तव में क्या है? आपका सोशल मीडिया फीड, आपके यूट्यूब सब्सक्रिप्शंस, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स, क्या वे आपको ऊपर उठा रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं? ये आपकी संगति है, और आप उसे बेहतर बनाने के लिए आज कौन सा एक ठोस कदम उठा सकते हैं।